ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमारे श्रीमद् भागवतम में से स्कंध है 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 50। तत्ते रहतम नमः स्तुति कर्म पूजः कर्म स्मृतिश्चरणयो श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किम् भक्तिं जना परं हंसगतौ लभेत्। अनुवाद। अतएव हे श्रेष्ठतम पूज्य भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि षड अंग भक्ति अर्थात प्रार्थना करना, समस्त कर्म फलों को आपको भगवान को अर्पित करना, समर्पित करना, पूजा करना, आपके निमित्त कर्म करना, आपके चरण कमलों को सदैव स्मरण करना तथा आपकी यश का श्रवण करना, ऐसी भक्ति किए बिना परमहंस पद को प्राप्त होने वाला लाभ भला कैसे, भला कौन प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, वेदों का आदेश है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुनाम श्रुतेन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केवल वेदाध्ययन तथा स्तुतियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, एकमात्र भगवत कृपा होने पर ही उन्हें समझा जा सकता है। अतः ये भगवान को समझने की विधि भक्ति ही है। भक्ति के बिना परम सत्य को समझने के लिए केवल वैदिक आदेशों का पालन करके परम सत्य को समझने में मददगार नहीं हो सकता। भक्ति की विधि उस परमहंस द्वारा समझी जाती है जिससे हर वस्तु का सार, जिसने हर वस्तु का सार ग्रहण कर लिया है। भक्ति के फल ऐसे परमहंस के लिए सुरक्षित रहते हैं और यह अवस्था भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वैदिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। ज्ञान तथा योग जैसी अन्य विधियां भी तभी सफल हो सकती होती हैं जब वे भक्ति में मिश्रित हों। जब हम ज्ञान योग, कर्म योग तथा ध्यान योग की बातें करते हैं तो योग शब्द भक्ति का सूचक होता है। भक्ति योग या बुद्धि योग जब बुद्धि तथा पूर्ण ज्ञान से संपन्न किया जाता है तो भगवत धाम वापस जाने के लिए वही एकमात्र सफल विधि होती है। यदि कोई संसार की पीड़ाओं से मुक्त होना चाहता है तो इस लक्ष्य की शीघ्र प्राप्ति के लिए उसे भक्ति ग्रहण करनी होगी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्णा। तो पहले हम सारण ठाकुर जी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम श्लोक पे वापस आएंगे। An important branch of Sri Chaitanya tree, Sri Saranga Thakur, Saranga Murari lived in Mamgachi, Modadrum Dweep. Staying under a bakul tree, Saranga Thakur worked hard every day to please his worshipable deity. Single-handedly, he would collect fruits, vegetables and firewood. He would also beg rice, cook, bathe, dress and feed his lord. After a full day of deity service, Saranga would cross the Ganges River to join Mahaprabhu's Harinam Sankirtan party in Mayapur. During one visit, Lord Gauranga noticed that Saranga's beloved Bakula tree was drying up and almost dead. Lord Chaitanya embraced the tree with his beautiful golden arms. Completely rejuvenated, the tree burst forth with green leaves and fresh, super fragrant flowers. To this day, devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu worship this special Kalpavriksha tree of Sri Dham Mayapur. Some devotees collect small pieces of wood, which occasionally falls off, and make neck beads or worship it. Saranga Thakur vowed never to initiate disciples despite Lord Chaitanya's insistence. One day he relented and decided to initiate the first person he saw. While bathing in the Ganges, he brushed against the floating corpse. Suddenly, it sprang to life. Stunned, the man slowly identified himself and bowed down to Saranga Thakur, who had just miraculously renewed his life. After giving him Mantra Diksha, Saranga Thakur became famous as Saranga Murari Thakur because the disciple's previous name was Murari. In Vrajalila, Saranga Thakur serves Radha Gopinath as Nandi Mukhi Sakhi. By taking a 45 minutes rickshaw ride from downtown Navadweep, you can still see the deities of Saranga Thakur and the Kalpavriksh Bakul tree. तो सारंग ठाकुर के बारे में यहाँ बताया गया किस प्रकार से वो नहीं चाहते थे कि किसी को दीक्षा दें, क्योंकि वो अपने भजन में किसी प्रकार की बाधा नहीं चाहते थे, लेकिन और उनकी विनम्रता भी थी कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है कि मैं किसी को दीक्षा दूँ, लेकिन महाप्रभु उनसे कहते थे नहीं, आप में योग्यता है और आपको दीक्षा देनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि पहला व्यक्ति जो मुझे मिलेगा मैं उसके कान में मंत्र फूंक दूंगा। तो पहला व्यक्ति जो उन्हें मिला वो एक डेड बॉडी थी जो कि तैरते तैरते आ गई थी, और डेड बॉडी एक बच्चे की थी जिसका नाम मुरारी था, इसको सांप ने डसा था। और अब ये पहली डेड बॉडी जब ये पहला व्यक्ति मिला तो सारंग ठाकुर ने इनके कान में मंत्र बोला, और इनके कान में जब मंत्र बोला तो ये व्यक्ति तो ये जीवित हो गए और इनके शिष्य बने। तो इनके माता पिता बाद में इनसे मिलने के लिए आए थे कि बेटा तू जिंदा हो गया, चल वापस चले, तू क्यों पंजाबी वहाँ के ब्रह्मचारी बन गया, चल वापस आ जा, चलो बेटा वापस चलो। तो तब इनके जो शिष्य थे इन्होंने बोला कि अब मेरे माता पिता जो है मेरे गुरु ही हैं, उन्होंने मेरे को जीवन दिया है। तो जिस तरह से यहाँ पर और इनके जो शिष्य का नाम पड़ा बाद में सारंग मुरारी या ठाकुर मुरारी, इन दोनों नाम से जाना जाता है। तो हम सबका दशा भी वैसी है, हमको भी इंद्रिय भोग के सांप ने डसा है और हम भी इसलिए जो है मृत हो रखे हैं। तो जब गुरु की कृपा वैष्णव की कृपा हमें प्राप्त होती है तो हम भी जीवित हो जाते हैं, हमें दीक्षा मिलती है, वैष्णव से शिक्षा मिलती है, तो हम ये कृष्ण कथा सुनकर हम लोग भी जीवित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है सारंग ठाकुर जी के जीवन से कि किस प्रकार से सारंग मुरारी, जो पहले जिनका नाम सिर्फ मुरारी था बाद में सारंग मुरारी पड़ा, तो इनको दीक्षा दी। और क्योंकि इन्होंने एक शव को जीवित किया था तो इसलिए इनके जो डिसेंडेंट्स हैं जिस जगह रहते हैं उस गांव का नाम है शव, मीन मतलब कॉर्प्स, कि वो मृत लोग भाई एक मृत व्यक्ति को जीवित किया था हमारे पूर्वज सारंग ठाकुर जी ने, तो इसलिए गाँव का नाम ही है शव। तो शव नाम के इस गाँव में इनके डिसेंडेंट्स रहते हैं, और मामगाछी में राधा गोपीनाथ जी के विग्रह भी हैं, और हम लोग जो परिक्रमा करने जाते हैं तो हर बार वहाँ पर अवश्य जाते हैं हम लोग। तो जैसे कि यहाँ बताया गया गौर गणेश दीपिका बताया गया कि ये नंदी मुखी नाम की सखी हैं और ये राधा गोपीनाथ जी की वहाँ नित्य रूप से सेवा करते हैं। तो सारंग ठाकुर जी की जय, सारंग ठाकुर दरबार की महामहोत्सव की जय। तो अब हम पर्सन भागवत से बुक भागवत की ओर वापस आते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका अनुवाद फिर से पढ़ेंगे। अतः ये श्रेष्ठतम श्रेष्ठतम पूज्य भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भगवान को, भगवान नरसिंह देव जी को, प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं असल में ग्लोरिफिकेशन है भक्ति का, और पिछले सारे श्लोक ये बता रहे हैं कि भक्ति की कितनी महिमा है वास्तव में। तो ये महिमा चल रही है, तो आज महिमा में हम देखते हैं कि यहाँ पर आता है कि मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ क्योंकि षड अंग भक्ति अर्थात प्रार्थना करना, समस्त कर्म फलों को आपको यानी भगवान को समर्पित करना, पूजा करना, आपके निमित्त कर्म करना, आपके चरण कमलों को सदैव स्मरण करना तथा आपके यश का श्रवण करना, ऐसी भक्ति किए बिना परमहंस पद को प्राप्त होने वाला लाभ भला कौन प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ षड अंग की बात की गई है, और हम लोग जानते हैं प्रहलाद महाराज ने कौन सी विधा भक्ति दी, नवदा भक्ति। अब यहाँ षड हो गया, ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई। पहले कभी 9, कभी 6, कभी 3, कभी 2, भाई कितने अंग हैं एक बार फाइनली डिफाइन तो हो जाए। तो कितने अंग हैं भक्ति के? 9 अंग हैं, लेकिन 9 अंगों को करने के लिए ये 6 कार्य हम करेंगे तो ये 9 अंग अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब जैसे देखें एक्चुअली इसके अंदर जो 6 बताए गए हैं ना, 9 अंग इसमें सम्मिलित हैं। जैसे कि यहां बताया गया ऑफरिंग प्रेयर्स, प्रार्थनाएं करना, वंदनम, ठीक है, डेडिकेटिंग ऑल रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज, अपने सारे कार्यों को समर्पित करना, साख्यम, दूसरी कहते हैं यार तू चिंता मत कर मैं तेरे को कर दूंगा काम, ठीक है तू बैठ तेरा होमवर्क मैं कर दूंगा, किसी के लिए जो है कार्य करना, साख्यम, वर्शिपिंग यानी कि अर्चनम, वर्किंग ऑन योर बिहाफ, मैं आपके बिहाफ पे काम करूंगा, आपके लिए कर्म करूंगा, आप चिंता मत करो आपके लिए मैं करूंगा काम कर्म करूंगा। तो इसमें आता है दास्यम और आत्मनिवेदनम, दोनों आ गए इसके अंदर। जैसे भरत जी ने क्या कहा भगवान श्री राम को कि भाई आपकी पादुका यहां रहेगी और मैं कार्य करूंगा, तो आपके बिहाफ पे काम करूंगा क्योंकि मैं आपका दास हूं, और आत्मनिवेदन आपकी पूरी तरह से शरणागत हूं। तो ये इसके अंदर आ गया, ऑलवेज रिमेंबरिंग योर लोटस फीट, स्मरणम भी हो गया, पांच सवनम भी हो गया। जब भगवान के चरणों का स्मरण किया तो पांच सवनम भी हो गया और स्मरणम दोनों हो गया इसके अंदर। एंड हियरिंग अबाउट योर ग्लोरीज, तो इसमें आ गया श्रवणम और कीर्तनम, जो सुनेगा फिर बोलेगा भी। आज तक अभी ऐसा हुआ कि किसी ने श्रवण किया लेकिन कीर्तन ना करे उसका? लोग अगर अखबार का श्रवण करते हैं तो अखबार का कीर्तन करते हैं, लोग अगर स्टारडस्ट पढ़ते हैं उसका श्रवण करते हैं तो उसका कीर्तन करते हैं, सरिता पढ़ते हैं, मनोहर कहानियां पढ़ते हैं उनका श्रवण करते हैं तो उनका कीर्तन करते हैं, और अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं तो उनका भी कीर्तन करते हैं। तो श्रवण कीर्तन ये दोनों निहित हैं, दोनों साथ साथ हैं। तो फैस्टली स्पीकिंग ये जो षड अंग यहाँ बताए गए हैं ये नवदा भक्ति का ही जिप फाइल है, ये कंप्रेस्ड वर्जन है। अगर इसको करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि नवदा भक्ति किस तरह से करनी है। जैसे प्रभुपाद जी की नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ने के बाद हमको रूप गोस्वामी जी की भक्ति रसामृत सिंधु समझ में आनी शुरू होती है, अदरवाइज अभी ट्रांसलेशन में है, आई हुई है भक्ति रसामृत सिंधु, कोई पढ़े कोई समझ नहीं आता। लेकिन किसी ने अगर प्रभुपाद जी की नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ी हुई है यानी कि षड अंग पढ़े हुए हैं तो उसको नवदा भक्ति यानी कि उसका एक्सपेंडेड वर्जन जो भक्ति रसामृत सिंधु है, तब वो जाके कहीं थोड़ा क्लिक करना शुरू होता है तो समझ में आना शुरू होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के माध्यम से जाए तो बहुत बहुत अच्छा है, यू नो। इसीलिए भक्ति विकास महाराज बोलते हैं when we are serving भक्ति वेदांत then we can understand भक्ति सिद्धांत, and when we understand भक्ति सिद्धांत then we relish भक्ति विनोद। तो इस तरह से यही सीक्वेंस है, तो we can't jump the परंपरा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद जी की सेवा करनी पड़ेगी। सब सेवा करेंगे तो क्या होगा, जब ये शरण करेंगे उनके निर्देशानुसार तो होगा क्या, देन वील अंडरस्टैंड भक्ति सिद्धांत, या भक्ति सिद्धांत समझ में आएंगे भक्ति सरस्वती ठाकुर। और जब भक्ति सिद्धांत जब समझ में आएंगे तो भक्ति सिद्धांत की बात समझने के बाद फिर रिलिश करेंगे हम भक्ति विनोद, तो हम विनोद करेंगे भक्ति के कार्यों में। तो यही सीक्वेंस है। तो इस तरह से आचार्य आए और उनके नाम भी जो है वेरी वेरी मीनिंगफुली सीक्वेंशियल इन अ वे। तो इसीलिए जो प्रभुपाद जी ग्रंथ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर चर्चा आ रही है कि सारी जो भक्ति है उसी के ही अनुग्रह है, सारे के सारे सबके सब जो है अनुगत्य है भक्ति के। तो भक्ति असल में माता है और उनके बच्चे हैं, जैसे माँ होती है माँ के बच्चे, उसका नाम एक का नाम है बंटी, एक का नाम बबली, एक का नाम पिंकू, लेकिन ये सब के सब जो है माता के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से भक्ति मदर्स नेम भक्ति, ओके सिबलिंग्स कितने बच्चे कितने आएंगे, ठीक है बच्चों के नाम बताएं, बच्चे के नाम कर्मयोग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, ये सब बच्चे हैं असल में। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसीलिए भक्ति योग, ज्ञान योग कुछ भी बोलते हैं तो योग का मतलब ही वहां पर भक्ति योग है असल में, वही माँ का नाम, जय श्री राधा राधे का मंजू की जय, जगन्नाथ सुब्रमण्य की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौरता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो पिता का नाम आता है अपने नाम के बाद, जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट मतलब कृष्ण, जीसस बोले तो सन बेटा, तो आगे पिताजी का नाम आया। तो आगे पिताजी या माताजी का नाम आना बड़ा जरूरी है। तो इसीलिए पहले ध्यान, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, योग, बोले तो भक्ति योग, ध्यान, ओके, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, भक्ति। तो इसीलिए माता पिता जो है सारे योगों के एक ही हैं और वो है भक्ति योग। तो ये जो है ये माताश्री है असल में। तो कोई भी अगर किसी को कर्मयोग भी करना हो या ध्यान योग करना हो या कोई भी अगर योग करना होता है तो उसमें भक्ति का मिश्रण होना बहुत जरूरी है। इसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं भक्ति का मिश्रण बहुत बहुत जरूरी है उसके अंदर, यू नो। तो जो बच्चे होते हैं ये पूरी तरह से माता पिता पे निर्भर होते हैं, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो ये अपने स्वभाव के हिसाब से चलते हैं, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं फिर वो माता पिता के स्वभाव के हिसाब से चलते हैं। पहले वो अपनी इच्छा बताते हैं, भाई ये मेरी इच्छा है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो माता पिता के संरक्षण में रहने के कारण वो कुछ कार्य कर पाते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बताते हैं, मॉम मैं सब्जी ले आऊं बाजार से, डैड क्या मैं फोन का बिल भर दूं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दूं। तब जो है व्यक्ति मैच्योर होता है तो माता पिता की और ज्यादा सेवा करता है, लेकिन बच्चा जब छोटा होता है तो अपनी मनमानी करता है। इसी तरह से कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग जब ये बच्चे रूप में होते हैं तो ये अपनी मनमानी करते हैं इनकी, लेकिन फिर भी ये माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन ज्ञान, कर्म, ध्यान इन सबकी मैच्योर फॉर्म भी है जो कि भक्ति में अलाइंड है पूरी तरह से। जैसे ज्ञान योग, ज्ञान योग यानी ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान अर्जित करने की टॉप मोस्ट स्थिति है श्रीमद् भागवतम पढ़ना, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना, यानी कोई ज्ञान है, लेकिन ज्ञान जो है ये भक्ति में सम्मिलित है। उस तरह से कर्म, कर्म कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट कर्म वो होगा जो कि भक्ति में सम्मिलित है, यानी कि भगवान की सेवा करना। ध्यान, ध्यान लगाने की कई सारी चीजें हैं ध्यान लगाने को, और हमारा मन तो हर उस चीज पे ही ध्यान लगाता है जो गलत है। ऐसे अब बढ़िया ट्रेनिंग मिली हुई है दिमाग को, मन को, कि उसी जगह ध्यान लगता है जो गलत है, जो सही है उसे ध्यान बिल्कुल नहीं लगेगा। तो लेकिन टॉप मोस्ट स्थिति और सबसे पवित्र स्थिति है ध्यान लगाने की, और वो है भक्ति। तो इसे जब बच्चा जब बड़ा होता है तो ज्ञान, कर्म, ध्यान, ये जितने जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उतने ज्यादा भक्ति के साथ अलाइन होते चले जाते हैं। शुरू में भी ये माता पिता के संरक्षण में है, बड़े होकर भी ये माता पिता के संरक्षण में है, लेकिन जब ये छोटे होते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन जब ये ज्ञान, ध्यान और ये जब अपनी परिपक्व अवस्था में आते हैं, मैच्योर अवस्था में आते हैं, तो तब ये भक्ति के साथ, भक्ति के अनुसार चलते हैं ये। तो इसीलिए ये भक्ति की सेवा करते हैं और ये भक्ति के बच्चे हैं, और ये बचपन से लेकर बड़े होने तक ये भक्ति योग की सेवा करने के लिए ही बने हैं वास्तव में, ये उन्हीं की सेवा करते हैं। इसीलिए भगवद गीता के मिडिल 6 चैप्टर्स हैं वो है भक्ति योग, पहले 6 चैप्टर है कर्म योग, आखिरी 6 चैप्टर है ज्ञान योग। जैसे अगर फोटो भी कभी खिंचाते हैं तो माँ जो है बीच में बैठती है, ठीक है, बच्चे यहाँ तो एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, ठीक है, और फिर फोटो खिंचाते हैं, ठीक है, से चीज क्लिक ना, लेकिन माँ कभी ऐसे नहीं थी यहाँ बैठी, बच्चे जो है वहाँ बैठे हो तो कुर्सी पर फोटो खींचो, ऐसा नहीं है। ये मेरा बच्चा बंटी, ये मेरा बच्चा बबली, ठीक है, चलो बच्चों फोटो खिंचाए, ठीक है। तो इसी तरह से भक्ति योग बीच में भगवद गीता के मिडिल 6 चैप्टर्स, उनके एक तरफ है कर्म योग, एक बच्चा, दूसरा बच्चा ज्ञान योग, ये दोनों बच्चे मेरे यहाँ पर हैं, ठीक है, बीच में एक थोड़ा सा टॉडलर भी है ध्यान योग, छठा टप रहा था, वो भी बच्चा प्यारा सा है, वो भी है माँ के पास चरणों में बैठा हुआ वो, ठीक है, फिर माँ जो है ऐसे बैठी हुई है, माँ है, ठीक है, से चीज री वो। तो इसीलिए ये सारे के सारे योग जो है इस तरह से ये भक्ति के अनुगत्य ही हैं। और प्रभुपाद जी इसलिए बड़े दक्ष थे, इसलिए उन्होंने हमको ये श्रीमद् भगवद गीता दी। और लेकिन प्रभुपाद जी ने चैप्टर्स के नाम भी सारे के सारे भक्ति योग कर दिए, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं, देखिए आप बोलते हैं आपकी भगवद गीता एज इट इज है, झूठे हैं आप लोगों की भगवद गीता बिल्कुल एज इट इज नहीं है भाई। एज इट इज क्या, जहां कर्मयोग है वहां पर एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये क्या बात हुई भाई, कर्मयोग है तो कर्मयोग बताओ। ध्यान योग के अंदर तो हर श्लोक के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र है, कहते यार ये कमाल है, ध्यान योग की बात करो, जब भक्ति योग का चैप्टर आए तो भक्ति योग की बात करो। लेकिन प्रभुपाद जी की भगवद गीता, माय गॉड, शुरू से लेकर आखिर तक भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग, ये एज इट इज है, ये क्या भगवद गीता यथारूप है ये या भगवद गीता प्रभुपाद रूप है ये, जैसे ये तो यथारूप बिल्कुल नहीं दिखती हमें, ये भगवद गीता यथारूप है। लेकिन वास्तव में भगवद गीता यथारूप, जितनी यथारूप है इससे ज्यादा यथारूप हो ही नहीं सकती, ये अल्टीमेट यथारूप है। अब ये क्यों भला यथारूप है, प्रभुपाद जी जानते हैं कि ये मैं किन लोगों के लिए लिख रहा हूं, वो कस्टमर जानते हैं, इस भगवद गीता को पढ़ने वाले कस्टमर कौन है, इस भगवद गीता को पढ़ने वाले वो कस्टमर्स हैं जो कष्टों के अंदर मर रहे हैं बेचारे, पहली बात, और दूसरा ये कभी भी किसी भी चीज से कंफ्यूज होने के लिए सुपर सेंसिटिव है, इनको कंफ्यूज होने के लिए, भटकने के लिए इनको बहाना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा भगवद गीता के अंदर भटकने का, कि एक चैप्टर भी हो जहां प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हाँ भाई यहां पर जो है आप चाहे तो जंगल में जाके ध्यान लगा के भी भगवान को प्राप्त कर सकते। देखो प्रभुपाद जी, देखो एक तात्पर्य में लिखा है कि हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा भी एक चीज है, कुछ है, वो स्कोप छोड़ा नहीं प्रभुपाद जी ने, क्योंकि वो जानते हैं कलयुग के हमारे जो कस्टमर हैं ये डिविएट होने में मास्टर लोग हैं एकदम, इसीलिए कोई स्कोप ही मत छोड़ो। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कोई भी कैसा भी चैप्टर हो, वियोग हो या वियोग, चाहे वो वियोग का चैप्टर हो, चाहे वो ध्यान योग हो, कर्म योग हो, ध्यान कैसा भी हो, उसके अंदर भक्ति को डाला ही डाला, कोई स्कोप नहीं छोड़ा कि हम लोग भटक जाएं। तो पहला कारण है प्रभुपाद जी जानते हैं मेरा कस्टमर बेस कौन है, किसको ये पढ़ाने वाले हैं भगवद गीता प्रभुपाद जी, ठीक है। दूसरा, प्रभुपाद जानते हैं कि भगवद गीता का कंक्लूजन फाइनली क्या हुआ। कंक्लूजन ये नहीं हुआ कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन ने इतने सारे योग बताए, अब इसमें जो तुमको चुनना चुन लो, इफ यू आर सो कंफ्यूज पर्ची निकाल लो, पर्ची में जो निकला है वो चुन लेना कर लेना, ठीक है। अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 कौन सा निकला, कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, इससे भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ। एट द एंड द कंक्लूजन निकला पूर्ण रूपेण शरणागति भगवान की होनी चाहिए, या पूर्ण रूपेण शरणागति की बात मतलब बोले तो भक्ति योग, यानी कि कंक्लूजन जो है सारे के सारे का जब भक्ति योग है, तो इसीलिए हर स्टेप पे भक्ति डालना इज अगेन नथिंग रॉन्ग इन इट। और दूसरी बात प्रभुपाद जी जानते हैं कि अब हालांकि श्लोकों के अंदर तो हर जगह भक्ति योग नहीं है, जहां हर जगह कृष्ण नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने कृष्ण डाले। एक बार एक मायावादी ने बोला कि देखिए स्वामी जी, आपने हर जगह कृष्ण कृष्ण डाल दिए, आपने हर जगह कृष्ण को डाल दिया, जहां पर कृष्ण नहीं भी है वहां भी आपने श्लोक के अंदर जो है उसके ट्रांसलेशन में उसके परपोर्ट में आपने कृष्ण डाल दिया आपने। प्रभुपाद जी ने कहा जहां पर कृष्ण है वहां से तुमने भी तो कृष्ण को हटा दिया ना, तो मेरे को कॉम्पनसेट करना पड़ा सारा। जहां भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुमने वहां कृष्ण को हटा दिया कि उस निराकार उस अज्ञात ब्रह्म को शरण करना है, तो तुमने कृष्ण को हटा दिया ना, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए फिर मेरे को कृष्ण को वहां भी डालना पड़ा जहां कृष्ण नहीं थे, यू नो। तो इसीलिए मैंने जो है कृष्ण को डाला फिर। इसे प्रभुपाद जी ने जो है अब, लेकिन प्रभुपाद जी ने वर्ड मीनिंग दिया है उसी हिसाब से, लेकिन वर्ड मीनिंग में भाई निष्काम कर्मयोग तो हाँ निष्काम कर्मयोग ठीक है समझ में आ गया कर्मयोग, लेकिन ट्रांसलेशन में आते हैं प्रभुपाद जी तो फिर भक्ति योग करते हैं उसको। दैट मीन्स प्रभुपाद जी काम खुला खुला कर रहे हैं, चोरी छुपे नहीं कर रहे कि हाँ भाई देखो मैं भक्ति योग डाल रहा हूं हर जगह, कुछ बिगाड़ना बिगाड़ के देखो, किसी की हिम्मत है बिगाड़ लो, किसी की हिम्मत नहीं है सुधर ही जाता है। जैसे हमारे ये भक्त हैं उनकी आदत यही थी कि ना किताबों के अंदर गलतियां निकालना, और उन्हें शेक्सपियर जैसे ऑथर्स के अंदर भी गलतियां निकालनी थी कि देखो यहां पर इसने ऐसा लिखा है, ठीक है, ये वर्ड जो है अपने आप में रिपीटेशन है, या फिर ये वर्ड जो है ये पैराग्राफ अपने आप में रिडंडेंट है, इस तरह के यू वुड फाइंड मिस्टेक्स। तो उनको फाइनली जो है प्रभुपाद जी की बुक से बारे में पता लगा, उन्हें कहते हैं अच्छा इतने महान हैं, तो बुक शॉप में गए, कहते हैं भाई अच्छा आपके जो स्वामी जी हैं इनका सबसे बड़ा बढ़िया वाला मास्टरपीस क्या है इनका, कहता है मास्टरपीस है इनका श्रीमद् भागवतम, कहते हैं दे दो जी पहले इनका मास्टरपीस ही पढ़ते हैं, बाकी तो अपने आप नहीं पढ़ जाएंगे ना, है ना, जब मास्टरपीस में मिस्टेक निकल आएगी तो भाई बाकी क्या बचा, है ना, तो मास्टरपीस लेके गए, ठीक है, और पढ़ते ऐसे थे एक हाथ में सिगरेट दूसरे हाथ में भागवतम, ये भाई मिस्टेक तो निकालने तो ऐसे निकलती है मिस्टेक्स, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी का भागवतम ऐसा है, ये मिस्टेक इसमें निकलती नहीं, अपनी खुद की मिस्टेक्स हमारी साफ हो जाती है। और पढ़ते पढ़ते भाई साहब फर्स्ट कैंटो के अंदर अंदर ये सिगरेट छूट गई, ये वाइन पी रहे साथ साथ में, एक पैग लगाया दूसरा पेज पढ़ा, पैग लगाया इस तरह से पढ़ते पढ़ते सारी वाइन सारी सिगरेटें सब छूट गया, 16 माला आ गई फर्स्ट कैंटो के आखिर में। उसके बाद तो जो इन्होंने पढ़ा वो तो पूरा फुल फ्लेज्ड भक्ति में था फिर, तो कहाँ पे मैंने प्रभुपाद जी गलती निकालने चला था, इन्होंने मेरी गलतियां निकाल दी। तो प्रभुपाद जी खासी दी है, तो इसीलिए उन्होंने जो ट्रांसलेशन जिस तरह से दी है वो वैसी है। तो प्रभुपाद जी ने बोला दैट्स व्हाई इफ समवन रीड्स माय श्रीमद् भागवतम ही विल बी फोर्स्ड टू बिकम अ प्योर डिवोटी। और कोई ना बनना चाहे नहीं बनूंगा मैं शुद्ध भक्त, नहीं बनूंगा मैं पढ़ूंगा नहीं बनूंगा मैं, पढ़ बेटा यू विल बी फोर्स्ड टू बिकम अ डिवोटी, पढ़ के देख मरेगा ही मरेगा पक्की बात है। तो ये भक्तिवेदांत तात्पर्य ऐसे है, दे विल फोर्स अस टू बिकम प्योर डिवोटी। तो नहीं बनना चाहे कि मैं अशुद्ध रहूंगा तो रह नहीं पाएगा, नहीं असंभव है। तो ये इतने कृपा से सराबोर है ये। तो प्रभुपाद जी ने वर्ड मीनिंग दिया और वर्ड मीनिंग के बाद ट्रांसलेशन भक्ति में डाल दी, परपोर्ट में सुपर डुपर भक्ति डाल दी, आप लोग जो करना है कर लो। तो खुला गया, प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं छुपाया कि हाँ भाई हमने सब जगह भक्ति डाल दी, एवं जहां भक्ति नहीं भी थी जहां कृष्ण नहीं भी थे वो हमने डाल दिया, ठीक है। तो ये प्रभुपाद जी की ग्रेटनेस है। और प्रभुपाद जी ये भी है कि जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनको रेफरेंस भी देते हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्य जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या फिर बलदेव विद्याभूषण ये कर्मयोग को कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग को निष्काम कर्मयोग, उसको वैसे ही बता रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने उनको रेफरेंस भी दिए, यू नो। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो है ऐसा नहीं कि जो है सिर्फ वो अपने आप को इम्पोज कर रहे हैं, अदर वो रेफरेंस नहीं देते पूर्ववर्ती आचार्यों की, तो पूर्ववर्ती आचार्यों की उन्होंने भी रेफरेंसेस भी दिए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रभुपाद जी ये जो बुक्स हैं इनके अंदर हर जगह कृष्ण इसलिए मिलते हैं क्योंकि देखो जो नशेड़ी आदमी होता है ना वो अपने नशे की बातें करता है सब। और जैसे जो व्यक्ति जो है स्त्री से बड़ा आसक्त होता है वो क्या हर बात में स्त्री की बात करेगा कि भाई अगर मान लो कोई कोई अकेले बैठ के केक खा रहा है, हाँ बेटा खा लो केक खा लो बेटा, एक दिन तुम्हारे साथ कोई और आएगा जो केक तुम्हारे से लेके चला जाएगा और वो केक खाएगी और अपने बच्चों को खिलाएगी, तुम्हें नहीं खिलाएगी, ठीक है। वो हर चीज़ मुझसे लिखाएगी क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है स्त्री, ठीक है ना, उसकी सारी चेतना पे स्त्री हो गई है क्योंकि स्त्री के बारे में सोचता है वो, ठीक है, क्योंकि उसकी चेतना उसी से भरी हुई है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। अब इसको अगर मैं ब्लू गॉगल्स लगा लूँ सब ब्लू ही नजर आएंगे। तो इस तरह प्रभुपाद जी की दृष्टि में क्या है, सिर्फ कृष्ण 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 ही है। तो इसीलिए वो अपने आप को रोक नहीं सकते कि मैं यहाँ ना कृष्ण को रोक लूंगी, नहीं नहीं हमें कृष्ण को नहीं, यहाँ कृष्ण को नहीं ना। तो उनको नशा है कृष्ण का, प्रभुपाद जी को कृष्ण भक्ति का नशा है, इसीलिए वो रोक नहीं पाते हर जगह पर जो है हिज डिवोशनल एक्सटेसीज दे पोर इनटू द परपोट्स, वो रुकता ही नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है हम लोग जैसे भागवतम क्लास देते हैं श्लोक के अंदर कुछ समझ नहीं आता, प्रभु जी सब बोलेंगे यार, तात्पर्य इकलौता सहारा होता है कि भाई तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी ने उसको खोला है तो भाई उसमें फिर सहारा होता है कि हाँ इसमें आप कुछ बोल पाएंगे, ये तो श्लोक में तो कुछ समझ नहीं आता क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन में कुछ समझ नहीं आता क्या बोलेंगे। तो प्रभुपाद जी जो है दैट्स व्हाई जैसे प्रभुपाद जी की जो एज इट इज है इज नथिंग मोर एज इट इज एज प्रभुपाद एज इट इज। तो इसीलिए कंक्लूजन इज भक्ति, प्रभुपाद जी जो है ही इज एडिक्टेड टू कृष्णा, और वर्ड मीनिंग प्रभुपाद जी ने दिए हैं, और कलयुग का प्रोडक्ट्स प्रभुपाद जी जानते हैं मेरे प्रोडक्ट कौन है, मेरे कस्टमर बेस कौन है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली प्रभुपाद जी ने रेफरेंसेस भी दिए हैं पूर्ववर्ती आचार्यों के। तो इसीलिए प्रभुपाद जी की बुक जो है वो पूरी तरह बताते हैं कि हाँ भक्ति योग इज द किंग, और उसके बाद जो है ये माता पिता है यही किंग है, बाकी सब योग जो है उनकी प्रजा के रूप में है वास्तव में। तो इसीलिए प्रभुपाद जी की जो जो ग्रंथ है दे आर मोस्ट कंप्लीट। तो यहां बताया जा रहा है कि अगर कोई इन छह विधियों का पालन ना करे तो भला वो उस चीज को कैसे प्राप्त करेगा जो कि परमहंस को प्राप्त होती है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम को परमहंस संहिता ही बोला जाता है कि परमहंस लोग इसको बहुत रिलिश करते हैं। अच्छा ठीक है, तो हम लोग क्या है, हम तो परमहंस नहीं है, हम तो परम काक है, परम कौआ वर्गियन और परमहंस, तो हम क्या करें फिर। लेकिन श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी इतना शक्तिशाली है कि ये परम काक को परम हंस बनाने की शक्ति रखता है ना। तो इसीलिए भी हमको शरणागत होना चाहिए श्रीमद् भागवतम को ना। एक बार एक व्यक्ति ने बोला कि श्री प्रभुपाद रामकृष्ण परमहंस वाज इनकार्नेशन ऑफ गॉड, रामकृष्ण परमहंस है ये ना भगवान के अवतार थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा लेकिन वो किस प्रकार से अवतार थे, वो कैसे अवतार हुए वो। तो इस व्यक्ति ने कहा देखिए वो इसलिए अवतार थे क्योंकि एक शराबी उनसे मिला था और उनसे मिलने के बाद उस शराबी की शराब छूट गई, तो शराबी की शराब छुड़ाने का दम था इनके अंदर, इसीलिए ये भगवान के अवतार थे। प्रभुपाद जी ने कहा ऐसे जो हजारों नशेड़ी हैं जिनका नशा मैंने छुड़ा दिया, जो LSD मैरिजुआना लेते थे मैंने इनका नशा छुड़ा दिया, दैट मीन्स आई एम 1000 टाइम्स बेटर इनकार्नेशन ऑफ गॉड देन रामकृष्ण परमहंस। बट हु इज रियल परमहंस, रियल परमहंस इज जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवज्रकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो ही इज अ रियल परमहंस। तो परमहंस का मतलब है जो कि हर चीज का सार जानता है वास्तव में। तो यहां पर ये और हम देखते हैं कि ना इस तरह की प्रेयर्स बार बार रिपीट होती हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम सबके अंदर जो है भगवान के प्रति शरणागत होने की इच्छा है, किसी ना किसी व्यक्ति की शरण में जाने की इच्छा है। जैसे हम जब सेशन देते हैं 6 डे सेशन, तो उसमें एक जो सबूत बताते हैं कि भगवान है वो ये है दैट फॉर एवरी डिजायर देयर इज फुलफिलमेंट, इच्छा है तो साथ में फुलफिलमेंट भी है। अगर शॉपिंग करने की इच्छा है तो दुकानें बनी, ठीक है, अगर भोग करने की इच्छा है तो खाने स्वादिष्ट चीजें ही बनी। तो जो चीज की इच्छा है तो उसी फुलफिलमेंट भी है। तो इसीलिए हम सबके अंदर क्योंकि शरणागति लेने की एक स्वभाव है आत्मा का, तो इसीलिए वो किसकी शरण में जाए ये बात स्पेसिफाई करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए उसको इसलिए हम देखते हैं कि इस तरह के जो जो प्रार्थनाएं बार बार रिपीट होती हैं, चाहे प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हो, कुंती महाराज की प्रार्थनाएं हो, लगता है यार ऑलमोस्ट सारी सेम ही चल रही है। तो है ना सब जगह भगवान आप तीनों गुणों के परे हैं, भगवान आप दिव्य हैं, भगवान आप सृष्टि के उद्गम हैं। यार ये तो पहले भी आई थी और ये प्रार्थना फिर आ गई, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रही फिर उसमें भी आ जाती है, ये रिपीटेशन क्यों है। ये रिपीटेशन क्यों है? एक बार क्या हुआ, हमारे एक डिवोटी है, एक डिवोटी जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो पंजाब में कर रहे थे, तो चार लोग बैठे हुए थे, ठीक है, कौन लोग थे आप जानते हैं, ठीक है, तो इनको जो है इन्होंने भगवदगीता पकड़ा दी, ये आपके लिए भगवदगीता, ये आपके लिए भगवदगीता, ये आपके लिए भगवदगीता, अरे आपके लिए भगवदगीता, चार लोग थे, चारों पकड़ा दी। मैंने कहा ये तो कहता है ये तो सेम है, कहता अपने हम चारों को जो है सेम ही किताब पकड़ा दी है। कहता ना, तो डिवोटी ने बोला नहीं नहीं ये क्या है, ये वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू, वॉल्यूम थ्री, वॉल्यूम फोर, चार वॉल्यूम है इसके। कहता अच्छा चार वॉल्यूम है, कहते लेकिन लिखा नहीं है कहीं, मैं वॉल्यूम 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 टू, कहते ये तो एक ही लग रही है, तो है ये तो उल्लू बना रहे तो है, ये चार जो है ये सेम ही है, अलग अलग नहीं है ये। डिवोटी ने कहा देखिए जब आप गीता पढ़ेंगे तो आपके अंदर अलग भावनाएं आएंगी, जब ये पढ़ेंगे तो इनमें अलग भावनाएं आएंगी, तो इस तरह वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू, वॉल्यूम थ्री, वॉल्यूम फोर हो गया ना, है ना, एक ही भगवद गीता है लेकिन अलग अलग फीलिंग आई है ना। तो उसी तरह से ये प्रार्थनाएं जो है भले ही अलग अलग भक्त बोल रहे हैं और इन अ वे ये सब सेम ही लगती हैं, लेकिन हर एक भक्त की जो भावना है उसके पीछे ना वो बड़ी यूनिक है और बड़ी यूनिकली ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है और वो यूनिक है एक्चुअली। तो इसीलिए ये जो प्रार्थनाएं ऐसी आती हैं, तो इसीलिए आती हैं क्योंकि हम सबके अंदर इच्छा है किसी के शरण में जाने की, इसलिए लोग शरण में जाते हैं इस दुनिया में, फिल्म स्टार्स की शरण में जाते हैं, इसलिए मंदिर है, अमिताभ बच्चन के मंदिर है, रजनीकांत के मंदिर है, जयललिता के मंदिर है, कई मंदिर है, सचिन तेंदुलकर के मंदिर है, और मंदिर के ऊपर लिखा हुआ इफ क्रिकेट इज रिलीजन सचिन तेंदुलकर इज गॉड, और आरती भी होती है, आरती सचिन तेंदुलकर की, और होती है आरती होती है सचिन तेंदुलकर। तो बेसिकली शरण में जाने की सबकी इच्छा है, लेकिन किसकी शरण में जाए इस बात को स्पेसिफाई करना बहुत बहुत आवश्यक है। एक पॉप स्टार आप नाम सुना होगा एल्विस प्रेस्ली, इसका नाम सुना है, बहुत फेमस पॉप स्टार, ही वाज सो फेमस कि उसका डस्टबिन का जो कूड़ा था वो $12,000 का बिका, कि भाई ये हमारे इष्ट देव एल्विस प्रेस्ली का कूड़ा है, क्योंकि शरण में जाने की इच्छा है, किसी की पूजा करने की इच्छा है हमारी। इवन एल्विस प्रेस्ली ने एक बार तो अपने कॉन्सर्ट के बाद अपनी ऑडियंस के ऊपर मूत्र विसर्जन किया, और सबने उस मूत्र विसर्जन को ऐसे अपने ऊपर छिड़का एज इफ ये ऑल्टर से किसी ने अमृत फेंका है, ये मूत्र किसका है, ये तो एल्विस प्रेस्ली का मूत्र है, ये तो शरण लेने की इच्छा है लेकिन किसकी शरण में जाए, अमृत पीने की इच्छा है लेकिन किसका अमृत पिए और कहां से निकला हुआ अमृत पिए, कैसा अमृत पिए। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवतम है जो बार बार इन चीजों को बताता है, वही शरण में जाना है तो किसकी शरण में जाना है, बार बार ये बताना बहुत जरूरी है। तो कभी कभी रिपीटेशन लगता है, लेकिन रिपीटेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, नहीं तो हम लोग एल्विस प्रेस्ली, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत, जय ललिता, रणबीर कपूर, करीना, इनके चक्रों में बेचारे इनकी पूजा अर्चना करते रहेंगे, बेचारे इनके पोस्टर छापते रहेंगे अपनी अलमारियों के अंदर, अलमारियों के बाहर, दरवाजे के पीछे, इन्हीं की पूजा अर्चना, इन्हीं का स्मरण, इन्हीं का कीर्तन, इन्हीं का वंदन। तो इसीलिए बेस्ट रहते, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड टू स्पेसिफाई व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ भक्ति। तो इसीलिए इन छह विधियों को हम ठीक से कर सके, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको एक खूबसूरत सोसाइटी दी, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब ऑफकोर्स कभी कभी ना ये विचार आता है कि भक्ति जो है देखिए क्या है, तो भावनाओं की दुनिया है, भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, इंस्टीट्यूशन में इसको बांधना कितना गलत काम है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स, इतना के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, भक्ति की भावनाएं ना बंद जाती हैं, देखिए भक्ति मतलब इमोशंस हैं, नदियां हैं, ये तो बह रही हैं, इनको बहने दो, इन्हें रोको नहीं, इन्हें इंस्टीट्यूशन के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स के अंदर प्लीज। ये इस्कॉन जैसी ऑर्गेनाइजेशन, हम देखिए हम तो खुली भक्ति करते हैं, खुला है, सब कुछ खुला है हमारा, तो इनके यहाँ कुछ खुला ही नहीं, क्या दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, ये दिस इज नॉट गुड, ये तो एक नदी है, इसको बहने दो, इसे रोको, इसे एग्जैक्टली भक्ति एक नदी है, एब्सोल्यूटली 100% करेक्ट, भक्ति नदी है, भक्ति तो नदी है, लेकिन नदी को अगर रिवर बेड ना मिले, भक्ति को अगर रिवर बेड ना मिले ना, कभी भी समुद्र तक नहीं पहुंच सकती है। अगर रिवर बेड ना हो, कभी यहां घुसे, कभी किसी घर में घुसे, कभी नाली में चली गई, तो पहुंच गए समुंदर, भैया नदी हो गई, नदी चली थी यमुनोत्री से वहां घरों में घुस के नाली में वहां यहाँ हो गई, किसी के टम्बलर में आ गई, किसी में यहाँ आ गई, वहां आ गई, कि झरना बन गई, ये हो गई वो गई, इस तरह से कहने खत्म हो जाएगी, वो यहां तक ही थी नदी खत्म, पर वो समुंदर तक नहीं पहुंच पाएगी। समुंदर तक पहुंचने के लिए नदी को चाहिए रिवर बेड। रिवर बेड है इंस्टीट्यूशन, रिवर बेड है ऑर्गेनाइजेशन। जब हम ऑर्गेनाइजेशन का जब ऑर्गेनाइजेशन होती है तो सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाता है एक्चुअली, और इस तरह से भक्ति में भटकने के चांसेस हमारे उतने ही कम हो जाते हैं। तो इसलिए रिवर बेड है ऑर्गेनाइजेशन, इस्कॉन जो है ये एक रिवर बेड है। अगर रिवर बेड पे ये भक्ति की भावना है, इमोशंस, ये फीलिंग्स रहेंगी, तो हम कृष्ण रूपी समुंदर से मिलेंगे। नहीं तो ऐसे वैसे बस भक्ति चल रही है, कहीं पे भी चल रही है, कभी सो लिए, कभी उठ लिए, कभी खा लिए, कभी आ रही, कभी दोस्ती, कभी चाउमिन, कभी पराठे, हो गया, हो गई भक्ति। लेकिन हमें रिवर बेड चाहिए, द रिवर बेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अफकोर्स कभी कभी ये आरोप लगता है इस्कॉन के ऊपर भी, भाई इस्कॉन नाम की आपने ऑर्गेनाइजेशन खोली है, अरे कुछ नहीं है ये, असल में क्या है, ये तो एक अमरीकी कंपनी है ताकि क्या है यहाँ का पैसा अमरीका भेजा जा सके। हमने तो अपडेट कर दिया अपने फेसबुक में, यूट्यूब में हमने वीडियो डाल दिया है कि इस्कॉन नाम की ऑर्गेनाइजेशन से बच के रहे, ये असल में एक विदेशी अमरीकी ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि भारतीय लोग, ये श्रद्धालु लोग हैं, भोले भाले होते हैं ये, इनका पैसा लूट घसूट करके उन अंग्रेजों को दिया जा सके। ये इस्कॉन जो है ये उसकी, ये भाई ये षड्यंत्र है। इस्कॉन मतलब किसका कौन भैया, किसी का कोई नहीं है यहाँ पे, अरे कुछ नहीं यहाँ पे भैया, ये तो ढगोसला है सारा बता रहे हैं हम, ये तो यहाँ का पैसा वहाँ भेजने की तैयारी है, ठीक है। अब वाकई भाई अगर हम ये मान के चले इस्कॉन को अल्टीमेटली करना क्या था, यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाना था, यहाँ से पैसा भेजना था अमरीका, ठीक है। लेकिन ना ये काम करने में इस्कॉन से बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। इन गलतियों के ऊपर जो है थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पहली बात कि अगर तो यहाँ से पैसा अमेरिका भेजना है तो पहला सेंटर कहाँ खोलना चाहिए, इंडिया में। भाई लोगों को बेवकूफ बनाना है, न्यूयॉर्क में या इंडिया में, इंडिया में। तो मंदिर कहाँ खोलना चाहिए पहले, इंडिया में। भाई वहाँ तो ये बैंक अकाउंट खोलना है अमरीका के अंदर, यहाँ बेवकूफ बनाओ, पैसा ट्रांसफर करो। पहला मंदिर न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, अरे यार इंडिया में तो खोल लो। ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है लोगों को बेवकूफ बनाने की, जहां लोगों को बेवकूफ बनाना है वहां मंदिर नहीं खोल रहे। तो शुरुआत ही गड़बड़ कर दी, तो शुरुआत ही गड़बड़ कर दी। देखो ये तो पैसा भेजना था, उल्लू बनाना था लोगों को, और मंदिर कहाँ खोले शुरू शुरू के सारे सारे, इंडिया में जाके 70s में जाके मंदिर खोलने शुरू किए, शुरू शुरू में यहाँ भारी मंदिर खोले जा रहे हैं, एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू मेंटेन देमसेल्व्स। कमाल है, अरे इंडिया में पहला मंदिर खोलना चाहिए था, तो शुरुआत ही गड़बड़ हो गई ये तो, है ना। दूसरा, अभी इस समय इंडिया के अंदर करीब 40 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यानी मंदिर बन रहे हैं। तो कोई मंदिर है बड़ा मंदिर है, जैसे कि रुक्मिणी द्वारका देश 125 करोड़ का है, ठीक है। कोई जो है कोई सिंपल टेंपल है, जैसे गुड़गांव मंदिर है, 15 करोड़ 20 करोड़ का मंदिर है, ऑन एन एवरेज 20 करोड़ का हमारा एक प्रोजेक्ट है। तो यानी कि 40 प्रोजेक्ट के हो गए करीब 800 करोड़ रुपए, और बाकी हम लोग फूड फॉर लाइफ, मिड डे मील, इसके भी माध्यम से लोगों को खिलाते हैं, है ना, तो उसके लिए भी फंड रेजिंग करनी पड़ती है। अब ये इतना सारा पैसा जो है अगर हमको इंडिया में ही चाहिए, अगर सारा हमने बाहर ही भेज दिया, भाई सब अमेरिका भेजना, सारा पैसा लो बेवकूफ बनाओ अमेरिका भेजो, तो ये मंदिर कैसे बनेगा फिर। 500 करोड़ का मंदिर जो कि मायापुर में बनना है, भला ये कैसे बनेगा भाई, जहां पर हम क्वीन एलिजाबेथ को बुलाने की तैयारी कर रहे हैं, यहां पर हम बैरक ओबामा को बुलाने की तैयारी कर रहे हैं, वो मंदिर भला कैसे बनेगा, फिर सारा पैसा जाना है बाहर, फिर ये मंदिर कैसे बनेंगे, ये प्रोजेक्ट कैसे हैंडल होंगे, इस बात का कोई जवाब नहीं है। और अगर हम देखें साधना के स्टैंडर्ड्स, भाई अल्टीमेटली लोगों को बेवकूफ बनाना है तो सुबह 6:30 बजे मंदिर खोलो ना, ये 4:30 बजे नींद हराम करने का क्या मतलब था, 3:30 बजे सर्दी के मौसम में नहाना धोना ये सब करने की क्या जरूरत है, और प्याज लहसुन तो छुड़वा दिया, अरे भैया यहाँ बेलपुड़ी का स्टॉल लगाओ, फंड रेजिंग करो, अमरीका पैसा भेजो यार, और क्या। चार नियम वैसे सुबह 3:30 बजे कोई हमें देखने नहीं आ रहा हम लोग भक्ति कर रहे हैं, अरे 6:30 बजे सब उठते हैं तब मंदिर खोलना चाहिए हमें। चार नियम में नशा ना करो, ठीक है, जुआ ना खेलो और मांस ना खाओ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट चेरी ऑन द केक, नो इलिसिट सेक्स। कम ऑन, ऐसे फंडरेजिंग होगी, ऐसे फंडरेजिंग होती है, हर वो चीज जो इंसान जो करना चाहता है उसको रोक रहे हैं हम, स्पेशली इलिसिट सेक्स। बेचारा कितने समय एक स्पिरिचुअलिस्ट भी गिल्टी रहता है, अरे यार मैं कब निकलूंगा इससे, तो ऐसे ऐसे गंदे गंदे रूल बना के रखे हैं यार, बताओ। फंडरेजिंग करने, फंडरेजिंग करो, पैसा इकट्ठा करो, कैसे कैसे रूल बना के रखे हैं बताओ, कितने कठोर नियम है। सुबह की आरती, शाम की आरती, भागवतम क्लास, देखो इस समय क्लास ना हो यहाँ पर, बढ़िया। अपना लोगों बेवकूफ बना, पैसा इकट्ठा करो यार, सिंपल है, बढ़िया से अपना मटका सिल्क चकाचक। लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बताओ कितना तपस्या करते हैं, ब्रह्मचारी बना रहे हैं। ब्रह्मचारी बनाने से कितनी बदनामी होती है हम लोगों की, जवान लड़कों के करियर खराब करने हैं, घर रस्तियां खराब करनी है, उनको एक ही तरह के कपड़े बार बार पहनने के लिए मजबूर करना उन्हें, दिस इज सच अ टॉर्चर। ये किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है भला बताइए। और ग्रंथ भी देखिए, भगवद गीता, श्रीमद भागवतम, 18,000 verses, 12,000 verses, चैतन्य चरितामृत। अरे भाई सिंपल है, इंडिया के लोग कोई नहीं जानता भागवतम भगवद गीता। लोग कई बार पूछते हैं भाई फर्क क्या है दोनों में, बताना पड़ता है उन्हें भाई भागवतम गीता में फर्क क्या है। अरे सिंपल है, दो रखो, एक है गीता, एक है रामायण। गीता को नाम दो बजाय कि भगवद गीता एज इट इज के, आनंदमय गीता प्रबोधनी और चिंतामणि और चूड़ामणि, और रीडिस्कवर द ब्लिस, और लीडरशिप सूत्रा फ्रॉम द गीता। अरे जगह जग बिकेगी। और दूसरा होता है रामायण, रामायण रोमांच सुधा। अरे यार रामायण का रोमांच की सुधा है, दे यार दो कॉपी दे, तीन कॉपी दे। अरे यार इतनी सारी बुक्स बना, माय गॉड, इतना लिटरेचर कहीं भी नहीं, और आज भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, आज भी ट्रांसलेट कर रहे हैं। भानु महाराज जैसे महान भक्त जो है 10-10 घंटा रोज ट्रांसलेट करते हैं, क्यों कर रहे हैं यार। अल्टीमेटली देखो, फंड रेजिंग करने, लोगों को बेवकूफ बनाना है, क्यों हम लोग इतनी सारी बुक्स का क्या कर रहे हैं यार। एक गीता रामायण रखो, उनका बढ़िया सा गोल्डन बॉर्डर वाला कवर बनाओ, 1,000-1,000 रुपए की बेचो आराम से, क्या बढ़िया बिकेगी, है ना। और गीता रामायण भी क्या, इसके बढ़िया वो वाली किताबें निकालो जो लोगों को स्ट्राइकिंग लगे, जैसे कि काम सूत्र, रीडिस्कवर द प्लेजर ऑफ यूनियन, क्या बिकेगी, ऐसे बिकेगी, धड़ाधड़ बिकेगी। डू यू थिंक यू हैव मैरिड अ रॉन्ग पार्टनर, अरे किसको नहीं लगता ये, किसको नहीं लगता ये, यस ऑफ कोर्स यार, आई हैव मैरिड अ रॉन्ग पार्टनर मैन। दो चीज से तो मेरे को गिल्ट है, थोड़ा वेट करता मेरे को बेटर मॉडल मिल जाता है, एक मोबाइल का, दूसरा वाइफ का। ऐसी बुक्स बिकेगी, ऐसी बुक्स बिकेगी, टीचिंग द लॉर्ड कपिल, टीचिंग द लॉर्ड चैतन्य। अरे क्या करना है, क्यों इतनी बोरिंग किताबें लिख रहे हो यार, अरे फंड रेजिंग करो यार, ढंग की किताबें को लिखो ना, है कि नहीं। लेकिन क्या है ये भगवद गीता भागवतम, सारा प्लान चौपट कर दिया, क्या मार्केटिंग है यार, ये कोई मार्केटिंग करने का तरीका है इस तरह से, क्या क्या ऐसा कुछ होने वाला क्या। और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, डीटीज हर जगह सेम। अरे भाई नॉर्थ इंडिया में लिखो शेरवली माता के मंदिर, इस्कॉन शेरवली माता मंदिर कटरा, अरे देखो क्या फंडरेजिंग होगी। यूपी में श्री राम के मंदिर, इस्कॉन के मंदिर, श्री राम के मंदिर। साउथ इंडिया में बालाजी मंदिर, ठीक है, तिरुपति, या फिर मुंबई में आओ तो वहां पर गणपति अप्पा मोरिया, विघ्न विनाशक मंदिर, इस्कॉन मंदिर, आइए गणपति अप्पा कृपा लीजिए। अरे कैसे फंडरेजिंग होगी यार, ऐसे फंडरेजिंग होगी, पूरा प्लान चौपट कर रखा हुआ है, फंड रेजिंग करनी नहीं आती इस्कॉन में, स्ट्रेंज। और इन्होंने जिस व्यक्ति को चुना, द गॉड विच दे हैव चोजन टू डू फंडरेजिंग इज मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल गॉड, कृष्णा। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज किसको लेकर है, ये कृष्ण को लेकर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी है। भाई भगवान कैसे होते हैं, भाई 16,000 पत्नियां क्यों, इतनी गोपियां क्यों बनाई, ये चोरी क्यों करते थे, इन्होंने मामा क्यों मारा इन्होंने, ठीक है, इनका जन्म जेल में क्यों हुआ, ठीक है, इन्होंने राधा जी को छोड़ दिया, रुक्मिणी से शादी क्यों कर ली इन्होंने, ये लव ट्रायंगल पूरा क्यों नहीं हुआ इनका, इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज है माय गॉड, इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज है यार। वी हैव चोजन द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल गॉड टू डू फंड रेजिंग, ये किस तरह की फंड रेजिंग स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेंज। इनकी जगह श्री राम को लेते ना, श्री राम इज लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, अफोर्स उनकी भी कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है, बलि को छुपके को मारा, सीता को क्यों ताक दिया इन्होंने, कॉन्ट्रोवर्सी। तो यार सबसे लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शेरों वाली माता, कोई लीला ही नहीं है, खत्म यार, और क्या बिंदास। अरे फंड रेजिंग करने का यार कुछ तो दिमाग लगाना यार, पूरा चौपट कर रखा हुआ है, सब चौपट कर रख दिया। तो इसीलिए जो ऐसे लोग बोलते हैं भाई ये इस्कॉन ये तो है भारत से पैसा भेजने का है, अब देखो कितना मतलब कदम कदम पे मिस्टेक की हुई है हमने, कदम कदम पे मिस्टेक की हुई है। कहने को नाम होता है राजीव दीक्षित, लेकिन एक भी दीक्षित भक्ति क्वालिटी नहीं होती इनके अंदर भाई, इस नाम में दीक्षित होने थोड़ी होता है भाई, माधुरी दीक्षित, दीक्षित थोड़ी है बेचारी, राजीव दीक्षित, अरे दीक्षित थोड़ी आ रहे यार, कुछ तो दिखाओ भाई, कुछ दीक्षित वाला तुम दिखाओ कुछ, क्या एनालिसिस बताओ ये, किस तरह का एनालिसिस है, किस तरह का एनालिसिस है? मंदिर ही मंदिर बनाए जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने एक मंदिर नहीं बनाया, अब तो इतने मंदिर बनाए जा रहे हैं, कमाल है। But firstly we need this institution, why? Because the purpose is ताकि हम ये छह कार्य अच्छे से कर सके। लेकिन जो व्यक्ति दूर से देखते हैं या ईर्ष्यावश देखते हैं उनको फिर जो है ये पता नहीं लगता कि वास्तव में ये छह कार्य करने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाई गई है, इस्कॉन नाम की सुपर सुपर डुपर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे इफ पीपल आर डिस्टर्ब दैट मीन्स वी आर सक्सेसफुल। तो जब हमें कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, चाहे वो ऋत्विक मायावादी हमें क्रिटिसाइज करे या फिर कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति क्रिटिसाइज करे, इट मीन्स वी आर सक्सेसफुल। ये सुनो राधानाथ महाराज बोलते हैं एनवी इज इनडायरेक्ट वे ऑफ एप्रिसिएशन, ये अप्रत्यक्ष तरीका है किसी की प्रशंसा करने का, यानी कि इस व्यक्ति के अंदर इतने गुण है कि इसे ईर्ष्या करना बनता है यार। तो इसीलिए अगर कोई इस्कॉन की निंदा करता है अगर, तो ये इनडायरेक्ट वही प्रशंसा है कि एक्चुअली इस्कॉन में इतना दम है यार, ईर्ष्या करना बनता है यार, स्टाइल है यार, कमाल है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है यार, बनता है यार, ईर्ष्या करना बनता है। तो इनडायरेक्टली एक्चुअली ये प्रशंसा है यू नो इस्कॉन की। तो इसमें जो भक्ति है ये करने के लिए, इसको खूबसूरती के साथ करने के लिए हमें प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर ये इंस्टीट्यूशन दिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमें जो है यहाँ पर ये छह कार्य हम लोग करेंगे, तो नवदा भक्ति इसमें इंक्लूडेड है, और ये करते रहेंगे हम लोग तो निश्चित रूप से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे और बढ़ भी रहे हैं। तो इसीलिए जो है इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशनली स्ट्रक्चरली डिवोटी वाइज स्पिरिचुअली वी आर प्रोग्रेसिंग। तो इसीलिए हमको ये कार्य करने चाहिए और ये करनी फुल फ्लेज्ड फैसिलिटी हमें प्रभुपाद जी ने दी है। वैसे बोला जाता है लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि हुए, नहीं प्रभुपाद जी जानते हैं हम लोग इतने डफर लोग हैं, लव मात्र साधु संघ के लिए भी हम लोग इतने ललायक नहीं होंगे। तो प्रभुपाद जी ने खोल दिया ये इस्कॉन, लवालब मात्र में साधु संघ सर्व सिद्धि हुए, लवालब मात्र में साधु संघ है भाई, दिन रात लवालब मात्र में साधु संघ है। लव मात्र साधु संघ से क्या करेंगे अभी हम लोग, वो प्रभाव डालेगा फिर उसको हम निगेट कर देंगे बाहर कुछ खा पी के इधर उधर कोई गलत सलत संग वंग करके। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा लवालब मात्र में साधु संघ सर्व सिद्धि हुए, कम टू इस्कॉन हैव लवालब मात्र में साधु संघ, और इस साधु संघ से हमें जो कृपा प्राप्त होती है तब जो है हम लोग वास्तव में भक्ति के कार्य को समझ सकते हैं। ओके समय हो गया, मैं यही विराम दूंगा। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है, टिप्पणी है प्रभु जी?
आपका बहुत ही गंभीर प्रवचन था। वास्तव में बहुत गंभीर बातों में आपने चर्चा की, जो हमारी भक्ति के फाउंडेशन है, आधार है, प्रभुपाद की पुस्तकों में पूरा विश्वास, इस कौन संस्था में पूरा विश्वास। हम लोग इतनी बेवकूफ़ी कर जाते हैं कि इस कौन में ही रह रहे हैं, इस कौन का ही नमक खा रहे हैं, इस कौन में पूर्ण रूप से आश्रित हैं, फिर भी बुरा ना माने तो एक सेकंड ही लगाते हैं इस कौन की बुराई करने में या बुराई सुनने में। इस कौन मीन्स वही हम सब कर होना चाहिए हम सबको, और हम सबको इतनी कृपा मिली हुई है, लवालब साधु संघ मिल रहा है, आई मीन इम्पॉसिबल। भगवान कहते हैं भक्तों को थोड़ा सा संघ मिल जाए मेरी सबसे बड़ी कृपा है, यहाँ लवालब संघ मिल रहा है। और प्रभुपाद ने इतना सुंदर सिस्टम बनाया कि अगर आपकी इच्छा भी नहीं है तो जबरदस्ती भक्त लोग आगे पुश करते रहते हैं, हरी बोल बोल के सीधा पहुँचा देते हैं। सो वंडरफुल प्रभु जी, थैंक यू सो मच योर डेडिकेशन टू प्रभुपाद, और आपका जो इतना कन्विक्शन है प्रभुपाद के ग्रंथों में, प्रभुपाद की संस्था में, ये इन्फेक्शस हो जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद, हम सौभाग्यशाली हैं कि आपसे सुनने को मिलता है,
आपसे सुनने को
सच ए रेयर सोल, और इतने अच्छे कंसेप्ट को इतने अच्छे तरीके से आप सरल तरीके से और विनोदी भाव से समझाते हैं। सो यू आर स्पेशली एम्पावर्ड बाय श्रील प्रभुपाद। अमोघ लीला प्रभु की।
हमने ये गाना सुना था, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो वास्तव में रुक्मिणी कृष्ण जैसे वैष्णव से सुनने के बाद उसके बाद कहीं हम बोलने का कुछ हिम्मत कर पाते हैं, साहस कर पाते हैं। तो फास्टर में जो है प्रभु जी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नॉट जस्ट फॉर पंजाबी वर्क टेम्पल, ही इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एंटायर दिल्ली एनसीआर, इनफैक्ट एनी वेयर वी गो। तो इसीलिए हम प्रभु को इन्वाइट करते रहते हैं, बिकॉज यू नो हमारा तो क्या सिंह ज़्यादा बनता है ना, रुक्मिणी द्वारकाधीश में आए रुक्मिणी कृष्ण प्रभु। सो वी कीप इन्वाइटिंग प्रभु जी मोर एंड मोर, एंड वी रिक्वेस्ट प्रभु जी हमें मार्गदर्शन देते रहें, सो दैट वी प्रेजेंट द परंपरा एज इट इज मोर एंड मोर। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है? यस,
हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी ने ग्लोरीफाई किया है आपको, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सुनकर। इसे पॉइंट उठा था प्रभु जी, और हम लोग ये ऐसे सुनने को मिलता भी है कि इसको जो है पैसे बाहर भेज रहा है, और जो वीडियो में है राजीव दीक्षित उन्होंने भी जो वीडियो के बारे में बताया है बोला है, तो उन्होंने जो है वो उसको तो खैर थोड़ा उसको ज़्यादा एक्सट्रापोलेट कर दिया और उसको थोड़ा और क्रिटिसाइज़ कर दिया, लेकिन उन्होंने मुद्दा उठाया था कि इस्कॉन बैंगलोर जो है वो पैसे बाहर भेज रहा है, और फिर उन्होंने एक्सट्रापोलेट कर दिया कि उससे बड़ा मंदिर दिल्ली में है, उससे बड़ा मंदिर बॉम्बे में है, उससे बड़ा मंदिर वृंदावन में है, अगर वो एक मन टेम्पल इतना कर रहा है कोलगेट से भी 3 गुना ज़्यादा, तो सोचिए बाकी मंदिर कितना कर रहे होंगे। तो मैं ये जानना चाहता था कि क्या ऐसा बेंगलोर कर रहा है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा और एलाबोरेट कर पाएँ सबके जानकारी के लिए, एक इसके बारे में अगर थोड़ा और खुलासा कर सकें।
देखिए फंड रेजिंग में एक्चुअली वो कर रहा है, और उसे कर रहा है क्योंकि इंडिया की बेस्ट PR कंपनी उसने हायर की है। इस्कॉन बैंगलोर हैज हायर द बेस्ट PR कंपनी, पब्लिक रिलेशन कंपनी। किस तरह से हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं, इसलिए पूरे इंडिया में या इंडिया के बाहर भी द मोस्ट VVIP एंड VVVVVIP पीपल दे हैव द पैम्फलेट ऑफ अक्षय पात्र। तो ये उनकी ये PR बहुत ज़बरदस्त है। हमारे PR करने वाले हमारे भोले भाले शोधे शोधे भक्त हैं, ठीक है, उनको पता भी होता है चेयरमैन कौन होता है या HR हेड कौन होता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम वो बेचारे गाँव से आते हैं, जो आते भी हैं शहरों में अगर फंड रेजिंग के लिए, दे आर वेरी इनोसेंट पीपल। ओके, इस्कॉन बैंगलोर इज एन ऑफ शूट ऑफ इस्कॉन, ठीक है। तो पहले 13 संप्रदाय थे, तो हमने कहा चलो यार एक हम भी कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हैं अप संप्रदायों में। तो एक अप संप्रदाय है, इट्स ए डिवियंट ऑफ शूट ऑफ इस्कॉन, ऐसे लोगों का जो कि मानते हैं कि प्रभुपाद जी जो हैं बस वही फाइनल आचार्य हुए। प्रभुपाद जी इतने कमज़ोर आचार्य थे कि उनके बाद वो और आचार्य नहीं बना पाए, और प्रभुपाद जी के बाद जो है परंपरा ही पे ख़त्म होती है। इसके बाद जो है सारे चिलगोजे हैं, किसी में दमखम है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट दे बिलीव। इसीलिए जो है GBC जो है वो सिर्फ मैनेजरियल अथॉरिटी है। आज जो इस्कॉन है वो इस्कॉन असल में असली इस्कॉन नहीं है, असली इस्कॉन हम लोग हैं जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और प्रभुपाद जी के शिष्य जो है अगले 10,000 साल तक सिर्फ वही दीक्षा गुरु रहेंगे, और प्रभुपाद जी ने एक भी आचार्य नहीं बना पाए वो कि किसी को और वो कि वो आचार्य के तौर पर कार्य कर सके। सो दिस इज इस्कॉन बैंगलोर, ठीक है। और इस्कॉन बैंगलोर जो है एक कल मंदिर इवन हाई कोर्ट में भी जीत चुके हैं हम लोग केस, वो मंदिर जो है रियल इस्कॉन इज, वी आर द रियल इस्कॉन, दैट इज अ फेक इस्कॉन, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में भी अभी जो सुनवाई अभी सोच रहे थे मतलब करें ना ना करें, क्योंकि हाई कोर्ट ने ना सिर्फ डिसीजन हमारे तरफ सुनाया बल्कि साथ में ये बोला कि जो व्यक्ति है मधु पंडित नाम का जो व्यक्ति है ये चोर उचक्का व्यक्ति है, मतलब ये वर्ड्स हैं उसके, मतलब मेरे वर्ड्स नहीं हैं, दिस आर द वर्ड्स ऑफ हाई कोर्ट कि ये व्यक्ति जो है फ्रॉड है, इसने जो है ही इज यूजिंग द नेम ऑफ इस्कॉन टू गेट फंड्स फॉर हिमसेल्फ बेसिकली। तो इस तरह के लोग भला क्यों आते हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को पावर पोजिशन नहीं मिलती तो इस तरह के ऑफशूट्स निकलते हैं कि भाई अच्छा अगर हमको HOD नहीं बनाया या हमको अगर एक पावरफुल पोजीशन नहीं दी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो फिर हम जो है हम अपना आंदोलन अलग से खड़ा कर लेंगे। तो इस तरह के लोग होते हैं जो कि ईर्ष्यालु होते हैं और इस तरह का अलग ऑफशूट करते हैं। तो इस तरह से इस्कॉन का भी एक ये ऑफशूट है, इट्स अ डिवियंट ऑफशूट, इस्कॉन बैंगलोर के नाम से बात फेमस है, या फिर अक्षय पात्र भी इसको बोलते हैं। सो और जितनी भी खबरें आप सुनते हैं कि भाई मिड डे मील में जो है छिपकली मिली बस प्रसाद के अंदर, 90% केसेस, मोर देन 90% केसेस ये अक्सर में अक्षय पात्र के होते हैं, पर उसके बाद न्यूज़ चली जाती है भाई इस्कॉन में इस्कॉन की मिड डे मील में हो गया ऐसा, बट नेचुरली अक्षय पात्र में होता है, ठीक है। हमारे जो जितने भी किचन्स हैं जो हमारे इस्कॉन के किचन्स हैं दे आर सो प्योर, कभी भी आप सरप्राइज विजिट कर सकते हैं, वंडरफुली मेंटेन। तो इसीलिए जो है फैक्ट्री दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और ये इस्कॉन को मलाइन करती रहती है अक्सर थ्रू यूट्यूब वीडियोज और थ्रू इंटरनेट वेबसाइट। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ इंटरनेट टू नो अबाउट इस्कॉन, क्योंकि वहाँ पर जो है निंदा ज़्यादा है somehow, ठीक है। और इसलिए जो है इसलिए बहुत बहुत जरूरी है दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ इंटरनेट वी शुड टेक शेल्टर ऑफ डिवोटीज। और अगर कभी कोई डाउट भी आया अगर तो हमें भक्तों से आगे पूछना चाहिए, प्रभु जी मेरे को ना ऐसा डाउट मैंने सुनने में आया था, एंड देन वी कैन क्लियरिफाई यू द सिचुएशन। तो एक्चुअली यस ही इज डूइंग लॉट ऑफ फंड रेजिंग, बिकॉज उनका पर्पज एक्चुअली सिर्फ फंड रेजिंग ही है, दैट इज वाई। अब वो चाहे वो कृष्ण लीला पार्क बनाए वृंदावन में या फिर व्हाटएवर, लेकिन यह है कि सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना काफी नहीं होता, उसमें आत्मा डालना बहुत जरूरी होता है, और किसी भी मंदिर की आत्मा होती है उसके भक्त. सो हियर वी हैव द रियल लाइफ, क्योंकि यहाँ हमारे पास भक्त हैं. समवन इज रनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन द नेम ऑफ इस्कॉन एज अ सीईओ और अ सीएफओ और अ चेयरमैन, लेकिन उससे ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बनती है भक्तों से. तो हरिनाम संकीर्तन में नाचने कूदने वाले, भागवतम भगवद गीता का प्रचार करने वाले जो फायरी डिवोटीज हैं वो इस्कॉन में है वास्तव में. सो दैट इज इस्कॉन बैंगलोर. और मैं डिटेल में जाऊंगा, इसके बहुत सारे फैसेट्स हैं बिकॉज द टाइम इज ऑल्सो रनिंग, लेकिन ये है कि ऑफकोर्स इन टर्म्स ऑफ फंड रेजिंग दे आर डूइंग इट, बट इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड रेजिंग और डिवोटी रेजिंग नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग लाइक दैट. All right, was it others okay? Yes, true. देखो एक बहुत ही सटल है, ठीक है, इट इज मोर लाइक सकाम कर्मियों के निष्काम कर्मियों, ठीक है. सकाम कर्मियों में और निष्काम कार्यों में दोनों में व्यक्ति अपने कार्यों के फल को भगवान को अर्पित करता है, लेकिन सकाम कार्यों में क्या करता है, थोड़े फल अपने पास भी रखता है और वो क्रिया से आ सकते हैं, लेकिन निष्काम कार्यों के अंदर व्यक्ति क्रिया से आ सकता है लेकिन फल से बिल्कुल नहीं, 100% फल भगवान के लिए, ठीक है. और दोनों थोड़ा सा सूक्ष्म फर्क है, ठीक है. तो इसीलिए कुछ कार्य जो है हम भगवान के बिहाफ पे करते हैं, ठीक है, भाई एक्सक्लूसिवली भगवान के लिए किए जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल माताएं माला बनाती हैं, ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ भगवान के लिए. और कुछ ऐसे कार्य जो कि हम बाहर करते हैं लेकिन उसका फल भगवान को देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अर्निंग आउटसाइड, किसी इंस्टीट्यूशन में काम करना, किसी मल्टीनेशनल में काम करना, उससे जो लक्ष्मी आई वो लक्ष्मी मैंने जो है भगवान की सेवा में लगाई, ठीक है. तो इस तरह से दोनों ही जो है भक्ति में काउंट हो जाते हैं बिकॉज इससे जो है भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, ठीक है. तो जो जिस भी परिस्थिति में हो उसको उस परिस्थिति का प्रयोग करना चाहिए, चाहे पार्शली या फुल्ली भगवान की सेवा करने के लिए. तो ये दोनों में थोड़ा सा सूक्ष्म फर्क है, एक है कि डायरेक्टली भगवान की सेवा करना और दूसरा है कि व्हाटएवर हम बाहर कर रहे हैं उसका फल भगवान को दे दे रहा. इट्स लाइक दैट, ठीक है. ऑलराइट, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन. एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन 1? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन 2? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन 3? श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, सनातन ठाकुर त्रिपाठी महामहोत्सव की जय, समस्त भक्तवृंद की जय. गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा.